शायद देवता ने सही ही कहा था, इंसान अपने प्रारब्ध से नहीं भाग सकता है, क्योंकि अनंत जिस डर से भाग रहा था उस डर से आखिरकार उसका सामना हो ही गया। वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 2 की दूसरी कहानी कालशंकु, दूसरा अध्याय, भाग 17। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मोहित अग्रवाल। गेस्ट हाउस के पिछले दरवाजे से निकलकर सभी लोग गाड़ी में सवार हो चुके थे। ज्ञान के गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते ही एक शख्स भागकर गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। उसने उनकी तरफ बंदूक तान दी और जोर से चिल्लाया,
तूफान सिंह के होते थे अठे से कोनी भाग सको हो।
वो आगे भी कुछ कह रहा था लेकिन ज्ञान ने उसकी बात नहीं सुनी और गाड़ी तोड़ा दी। भले ही उस शख्स ने इस हिमाकत के बारे में अंदाजा नहीं लगाया था लेकिन लग रहा था कि वो पूरी तरह से पागल था। वो गाड़ी के बोनट पर झूल गया मगर इससे ज्ञान को धेले भर भी फर्क नहीं पड़ा। उसने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि रफ्तार तेज कर दी। सुशांत ने उसके चेहरे पर रोशनी डाली। अनंत उस तूफान सिंह को पहचान चुका था लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये उनके पास तक कैसे पहुंच गया। तभी ज्ञान ने अचानक से ब्रेक लगाए और तूफान सिंह एक झटके से आगे जाकर गिर पड़ा। वो फिर उठा या नहीं इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनका ध्यान खींचने के लिए दो गाड़ियां वहां और आ चुकी थीं। दोनों गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी। ज्ञान बेतहाशा गाड़ी भगा रहा था लेकिन एक जगह आगे रास्ता बंद था। वो लोग फिर से घिर चुके थे। करीब आधे घंटे बाद अनंत, नलिनी और उनके बाकी साथी एक बार फिर से उन्हीं बदमाशों की कैद में थे जिनसे वो कुछ घंटे पहले भाग छूटे थे। असल में बंधकों के भाग छूटने के बाद भी बदमाशों का गैंग लगातार उन पर नजर बनाए हुए था और रात को मौका मिलते ही उन्होंने उस गेस्ट हाउस पर धावा बोल दिया जहां ये लोग ठहरे हुए थे। अनंत को अपने साथियों से पता लगा कि सबसे पहले उन्होंने उस कमरे को चुना जिसमें ज्ञान और राज ठहरे हुए थे। बदमाशों की बदकिस्मती से सुशांत भी उस वक्त उसी कमरे में था और हमलावरों में एक ज्यादा बदकिस्मत था। छीना झपटी में उसके सिर में चोट लग गई और वो मारा गया। सुशांत ने उसी वक्त ज्ञान को गेस्ट हाउस के पीछे खड़ी गाड़ी में भेज दिया और खुद राज के साथ अनंत और नलिनी को ढूंढने चला गया। इसके बाद जो हुआ अनंत उससे वाकिफ था लेकिन अनंत का दिमाग रह रहकर तूफान सिंह के लिए घूम रहा था। तूफान सिंह बल्ली गिरोह का एक सदस्य था। जब पहली बार अनंत और राज बल्लियों के हत्थे चढ़े थे तब बंधक बने अनंत ने कहा था कि तूफान आने वाला है। तब इसी शख्स ने जवाब दिया था कि उसका तो नाम ही तूफान सिंह है। अनंत को समझ नहीं आ रहा था कि अगर उन पर वापस से हमला करने वाले बदमाश वही हैं जिनकी पकड़ से वो निकल भागे थे तो फिर तूफान सिंह बीच में कहां से आ गया। उसे कैसे पता था कि ये लोग यहां ठहरे हुए हैं। फिर भी अनंत अपने आप को यही सोचकर तसल्ली दे रहा था कि वो भले ही फिर से बंधक बन गए हैं लेकिन बल्लियों से दूर हैं। उन पांचों को हाथ बांधकर एक ही कमरे में रखा गया था। आगे क्या होगा ये सोचकर सभी डरे हुए थे, यहां तक कि अनंत भी। लेकिन इस वक्त वो अपने साथियों पर अपना डर जाहिर नहीं होने दे रहा था। उसने एक नजर अपने साथियों पर डाली। नलिनी के चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। अनंत ने उसे हिम्मत बनाने की कोशिश की। तभी सुशांत फट पड़ा, ये लोग आखिर हमसे चाहते क्या हैं? जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ देर बाद राज ने कहा, बट सर पुलिस इनको ढूंढ रही है, इसके बाद भी इन लोगों ने इतनी सेफ जगह पर हमला बोला, इसका मतलब ये बहुत डेंजरस है। सुशांत ने कुछ सोचकर जवाब दिया, इसका एक मतलब और भी है, इनको हमसे जरूर कोई ऐसा काम है जो हम ही कर सकते हैं। सुशांत की बात सुनते ही अनंत को झटका लगा। वो सोचने लगा, कहीं ये लोग भी कालशंकु के पीछे तो नहीं, लेकिन ऐसा है तो फिर वो तूफान सिंह बीच में कहां से आ गया। अनंत सारी संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। तभी सुशांत जोर से चिल्ला पड़ा, तुम हमसे चाहते क्या हो, बताते क्यों नहीं। सुशांत इतनी जोर से चिल्लाया था कि उसकी बात सुनकर बाहर भी जो हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी वो भी पूरी तरह से बंद हो गई। माहौल में घनघोर सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। अनंत ने अपने चारों तरफ निगाह डाली। सुशांत के अलावा हर किसी के चेहरे पर डर के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुशांत फिर से चिल्ला पड़ा,
हमें पकड़ क्यों रखा है? क्या चाहते हो हमसे?
अनंत ने सुशांत को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे पागल हो गया था। वो लगातार चिल्लाया जा रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। यह आवाज सुनकर सुशांत हंसने लगा। अनंत उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, मगर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी दो हट्टे कट्टे बदमाश अंदर आए और उन्होंने सुशांत को एक कुर्सी से बांधकर उसके मुंह पर टेप चिपका दिया। इसके बाद वो बदमाश वहीं खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद कुछ लोग और आए, कुछ ऐसे लोग जिनके चेहरे अनंत को जाने पहचाने लग रहे थे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसे लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। उनमें से एक आदमी ने कहा,
अब तुम लोग जाओ, यहां से हम संभालेंगे।
अचानक से बंधकों को सब समझ आ गया। यह इन गिरोहों के काम करने का तरीका है। एक गैंग दूसरे गैंग के लिए किडनैपिंग करता है, यानी इन्हें किडनैप किया पहले गैंग ने और दूसरे गैंग को हैंडओवर कर दिया। लेकिन यह दूसरा गैंग कौन सा है? शायद अनंत के पास इसका जवाब था, वो जवाब जिससे बचने के लिए अनंत भाग रहा था। और इसके बाद वो आया जिससे अनंत डर रहा था। एक काला शॉल ओढ़े वो शख्स, वो खूंखार दरिंदा भभूति बल्ली वहां आ पहुंचा। और अनंत, वो जिससे दूर भाग रहा था, वो वापस से उसी चक्र में फंस चुका था। भभूति ने आते ही सुशांत पर एक जोर का प्रहार किया। हट्टे कट्टे ताकतवर भभूति बल्ली का प्रहार सुशांत सहन नहीं कर पाया और कुर्सी के साथ जमीन पर जा गिरा। ये देख नलिनी जोर से चिल्ला पड़ी। उसकी आवाज सुनते ही भभूति का ध्यान सुशांत से हटकर उसकी तरफ चला गया। उसने एक निगाह नलिनी को देखा और अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा,
जब मैं बोलूं तो बस मैं ही बोलूं।
उसने खा जाने वाली निगाहों से नलिनी की तरफ देखा। उसके देखने भर से नलिनी कांपने लगी थी। भभूति फिर से सुशांत की तरफ मुड़ा, जो कुर्सी समेत जमीन पर गिरा हुआ था और अब उठने के लिए हाथ पैर मार रहा था। भभूति उसे इस तरह छटपटाते हुए देख रहा था। उसकी छटपटाहट देखकर जैसे उसे मजा आ रहा था, इसलिए वो उसके पास बैठ गया और बोला,
और डांस कर विलायत बिलाव, और डांस कर।
फिर भभूति वहां से खड़ा हुआ और सभी के चेहरों को गौर से देखने लगा, जैसे वो उन चेहरों को देखकर कुछ तसल्ली कर लेना चाहता हो। राज, ज्ञान, नलिनी और आखिर में अनंत। लेकिन उसके चेहरे पर असंतुष्टि के भाव थे। आखिर में उसने अपने आप से कहा,
अरे तने सही में या लोगों की जरूरत है?
भभूति वहां चारों तरफ चक्कर काट रहा था। फिर वो उन लोगों से बरामद सामान का जायजा लेने लगा। आखिर में वो वापस से सुशांत के पास आया और उसके मुंह पर चिपका टेप हटा दिया। ऐसा लगा जैसे सुशांत कुछ कहने वाला था, लेकिन उससे पहले ही भभूति ने कहा,
ना ना नहीं, एक शब्द नहीं, वरना ई कुर्सी पे ही थारी समाधि पड़ जावेगी। तू मने जाने कोनी है, मारो नाम है भभूति, भभूति बल्ली।
अपना परिचय देकर भभूति जोर से हंसने लगा, लेकिन जैसे ही सुशांत ने उसका नाम सुना, वो बुरी तरह से कांप उठा। उसे समझ आ गया कि पिछले 4-5 दिनों से अनंत जिस हैवान से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, वो हैवान उसके सामने खड़ा था। सुशांत ही नहीं, नलिनी को भी यह जानकर झटका लगा था कि अनंत एकदम सच बोल रहा था। सुशांत ने अनंत की तरफ देखा। अनंत ने उसे देखकर निगाहें झुका ली। तभी भभूति का ध्यान इस ओर गया कि सुशांत किसी दूसरी तरफ देख रहा है, तो उसने फिर से सुशांत के गाल पर एक जोर का हाथ दे मारा। इस बार सुशांत गिरा तो नहीं, लेकिन उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि उसका पाला किससे पड़ा था। अचानक से अनंत की बताई एक एक बात उसके दिमाग में कौंधने लगी। बहुति ने उस पर 3-4 हाथ और टिका दिए। शायद कोई और वक्त होता तो सुशांत कुछ करता भी, लेकिन अनंत ने उसे अपना जो प्रारब्ध बताया था उसकी वजह से उसकी पूरी ताकत जैसे गायब हो गई थी। उसे लग रहा था कि उसका कोई भी पल आखिरी हो सकता है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी जगह बैठा रहा। आखिर में भभूति ने कहा,
और कोई ना कोई प्रॉब्लम हो तो बता दियो, अठे की अठे सॉल्यूशन हो जावे को।
किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब भभूति अनंत की तरफ मुड़ा और कहा,
तो थारो नाम है अनंत?
अनंत ने सिर हिलाकर उसे जवाब दिया। भभूति उसे देखकर कुछ सोचने लगा, लेकिन इसके बाद असंतुष्टि के भाव लेकर चिल्लाकर बोला,
हे डोकरा, काई करनो है यहां को?
बाहर से बल्लियों का बूढ़ा बाबा चलकर अंदर आया। उसने सब पर निगाह डाली और आखिर में अनंत को देखते हुए संस्कृत मिश्रित शब्दों में कुछ बड़बड़ाने लगा। इसके बाद भभूति ने अपने आदमियों से कुछ कहा। जवाब में उसके आदमी उन सबको हथियार की नोक पर बाहर ले जाने लगे। अनंत के साथियों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, वो चुपचाप उनके साथ चल पड़े। लेकिन बाहर जाते वक्त अनंत ने बूढ़े को आवाज दी,
बाबा।
अनंत की आवाज सुनते ही एक बदमाश ने उसे आगे धकेल दिया, मगर उस बूढ़े ने कुछ इशारा किया जिसके बाद वो लोग अनंत को वहां छोड़कर वहां से बाहर निकल गए। अब कमरे में केवल बूढ़ा और अनंत ही थे। बूढ़े ने उसे देखते ही कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया, मगर अनंत हर बार की तरह कुछ शब्द ही समझ पा रहा था। आखिर में बूढ़े ने कहा,
तू जाने है, तू काल शंकु से कोनी भाग सके है, काल शंकु कोई न माफ कोनी करे है।
ये 14 फरवरी 2019 की रात थी और अनंत ने समय से भागने की कोशिश की, लेकिन नई समय रेखा ने भी उसे वहीं पहुंचा दिया जिसके आगे की कहानी अनंत को पता थी। वो बूढ़े के सामने खड़ा सारी बात समझने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े ने उसे बताया कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन समय के बहाव को नहीं बदल सकता है। समय की हर धारा उसे वहीं ला फेंकेगी जहां उसे होना चाहिए था। अनंत ने कहा,
लेकिन इस बार तो हमारी मुलाकात भी नहीं हुई थी, फिर आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा?
अनंत की बात सुनकर बूढ़ा हंसने लगा। पता नहीं उसकी हंसी कैसी थी। अनंत फैसला नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने उस बूढ़े को पहली बार हंसते हुए देखा था। बूढ़े ने कहा,
तने लागे है बस एक तू ही है जो ये बारे में सब जाने है। मैं काल शंकु को पुजारी हूं, मने भी सारी बातें याद हैं।
अनंत सोचने लगा और उसे एक सेकंड में उन सवालों के जवाब मिल गए जो पिछली बार अधूरे रह गए थे। जैसे पिछली बार वो समझ नहीं पाया था कि उस बूढ़े ने उसे कैसे पहचान लिया था और उसे कैसे पता था कि सुशांत की मौत होने वाली है। बूढ़े ने आगे कहा,
काल शंकु ने पहुंचावा को जिम्मो थारे पास ही है।
अनंत ने कहा, पर इस बार तो हमने काल शंकु को देखा भी नहीं है। अनंत के बचपने पर बूढ़ा हंस पड़ा। तभी दूर जोर से बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी। अनंत ने अपनी घड़ी पर निगाह डाली, घड़ी में 1:30 बज रहा था। बूढ़े ने आंखें बंद कर ली और कुछ पुदपुदाने लगा। इधर बाहर तेज आंधी तूफान और बारिश का दौर शुरू हो चुका था। बूढ़े ने जवाब दिया,
तने काई लागे है, काल शंकु ने तू ही ढूंढ सके है, दुनिया में कोई काम कोनी रुके है, जो होनो है वो हो के रवे है, काल शंकु बाहर आ चुके है, पर तू उससे बंधेड़ो है, तू भाग को नहीं सके है, काल शंकु ने पहुंचावा को जिम्मो थारे पास है।
बूढ़े के मुंह से ये बात सुनकर अनंत कांपने लगा।
तो सुशांत?
अनंत अपनी बात पूरी नहीं कर सका। बूढ़े ने जवाब दिया,
उनको मरणो तय है, तू इन्हें टाल कोनी सके है।
अनंत जोर से चिल्लाया,
नहीं,
बूढ़े ने आगे कहा,
ओणी ओके रहेगी, तू चाहे तो भी और ना चाहे तो भी।
अनंत समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी बूढ़े ने आवाज दी,
भभूति।
अगले ही पल भभूति अपने दो साथियों के साथ अंदर आ गया। बूढ़े ने उससे कुछ कहा, जिसके बाद भभूति के इशारे पर उसके साथी अनंत को धकेल कर बाहर ले गए। आप सुन रहे थे कालशंकु दूसरा अध्याय, पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 17, लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, इन एसोसिएशन विद पिक्सल सिटी प्रोडक्शंस।